ओम शांति। तो आज के मुरली में यदि हम सार को देखें और स्लोगन तो लगभग मिलता जुलता है। जैसे बाबा ने स्लोगन में कहा कि इसी अलौकिक नशे में रहो, वाह रे मैं, तो क्या होगा, क्या होगा इससे? अगर हम इसी नशे में रहेंगे वाह रे मैं, तो बाबा ने कहा मन और तन की क्या होती रहेगी, डांस होती रहेगी। और इसी प्रकार बाबा ने कहा कि इस ज्ञान का फाउंडेशन भी क्या है, निश्चय है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि निश्चय ही, जब निश्चय अपने सर्वोच्च स्टेज पर होता है तो वही क्या बन जाता है, नशा बन जाता है। इसीलिए कहते हैं है ना कि मुरली कई बार पढ़ो, है ना। जब हम मुरली कई बार पढ़ते हैं तो और उसको समझते हैं, है ना, जितने बार उसको रिवाइज करते हैं या रियलाइज करते हैं, तो यही नशा में परिवर्तित हो जाता है। और निश्चय कम भी क्यों होता है, जब हम किसी भी पॉइंट से दूर हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करो, पता नहीं किस मुरली में कौन सी पॉइंट है, है ना। तो इसीलिए कहा कि जो ज्ञान का फाउंडेशन है वो निश्चय है, और निश्चय भी अनेक प्रकार के है ना। जैसे बाबा कहते हैं स्वयं में भी निश्चय हो, बाप में भी निश्चय हो, ड्रामा में भी निश्चय हो, मुरली की जो हर एक पॉइंट्स है इसमें निश्चय। लेकिन हर आत्मा चाहती है कि हमको निश्चय हो जाए, है ना। कोई ये नहीं चाहता मुझे संशय हो, हम हिलते रहें। तो ऐसा क्यों हो जाता है कि किसी को निश्चय हो जाता है, किसी को संशय होता है? हर एक बात का आधार है ना, हर एक बात का आधार है ना। जैसे मान लो आप यहां से आबू रोड जा रहे हैं, आपको आबू रोड जाना है, तो आबू रोड के तरफ जब आप चलेंगे धीरे धीरे आगे जाएंगे, और यदि आप पीछे चले जाओ पीस पार की तरफ गुरु शिखर, तो उधर तो आबू रोड नहीं आएगा ना। तो ऐसे ही निश्चय और संशय भी दो बातें हैं, इधर निश्चय है और इधर संशय। तो हमें क्यों निश्चय हो जाता है कभी और क्यों संशय होता है, तो इसे समझना है। एक अच्छे प्रकार से समझ लेंगे तो बहुत सहज होगा। जैसे कहते हैं ना, आप दुनिया में भी किसी को कहिए कि परमात्मा है ना, भगवान है और वो ब्रह्मांड में रहता है, ब्रह्मांड में रहता है, तो सभी लोग क्या कहेंगे, हाँ कोई बात नहीं, मानेंगे। इस बात को हर एक मानेगा कि परमात्मा ब्रह्मांड में रहते हैं। लेकिन समस्या कहाँ होती है, संशय कहाँ आ जाता है, जब हम कहते हैं कि वही भगवान जो जो परमात्मा है वह ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं। जब यहाँ जो ही ये बात आई तो लोगों को क्या होता है, संशय। क्यों हो जाता है, क्यों हो गया ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, बताइए। जब ब्रह्मांड में है तो स्वीकार कर रहे हैं, और यहां जब आ गए तो नहीं स्वीकार कर रहे हैं। जैसे पीएम है, मान लो मोदी जी हैं, पीएम है, तो अगर दिल्ली में है पीएम है तो हम कहेंगे हाँ पीएम। यहां भी आएंगे तो हम क्या कहेंगे, पीएम है, कि डाउट होगा कि नहीं वहां पीएम थे, अभी तो पीएम ने, ये तो मोदी जी, क्यों डाउट्स क्यों हो गया। तो बाबा ने बताया है मुरलियों में कई बार कहा कि जब हम देह को देखते हैं तो क्या होता है, संदेह उत्पन्न होता है। जब हम देह को देखते हैं तो संदेह उत्पन्न होता है, और जितना जितना हम आत्मा का अभ्यास करेंगे इतना ही निश्चय हमारा बढ़ेगा। तो यहां ये समझने की बात है हमको कि यदि स्वयं भगवान है ना, वह भी जब देह में आते हैं तो उनके ऊपर भी डाउट्स करते हैं कि पता नहीं भगवान है कि नहीं, और हम तो हमेशा रहते ही कहां हैं, देह में ही रहते। तो जो परम धाम में रहने वाला है वह जब आता है तो उसमें भी डाउट्स हो गया, तो हम यदि कुछ कहेंगे तो कोई मानेगा, हमारी क्या स्थिति है। तो इसीलिए हम भी जितना इस देह से परे रहेंगे, जितना देह से अलग रहेंगे, उतना ही कोई भी हमारी बातों में बिलीव करेगा, विश्वास करेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि इस ज्ञान का फाउंडेशन क्या है, निश्चय। यदि आपको निश्चय नहीं है तो केवल ज्ञान सुनते रहेंगे, इससे तो कुछ नहीं होता ना। निश्चय भी जैसे कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम तो ज्ञान, यहां हमारा ज्ञान की समझ भी बहुत अच्छी है, हमारा अमृत वेला भी बहुत अच्छा है, हमारा 3-4 घंटे का कम से कम योग का चार्ट है, पावरफुल योग का चार्ट, तो हम तो ठीक ही चल रहा है, ऐसा समझ सकते हैं कई लोग। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कई बार आपका पुरुषार्थ एफर्ट बढ़िया चल रहा है, लेकिन इसके साथ हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमारा डायरेक्शन कहां है। क्योंकि कहते हैं कि दिशा जो है, दिशा ही हमारे दशा को तय करती है। आप कितना भी अच्छा जैसे पुरुषार्थ करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि कोई बहुत अच्छा धनुर्धर हो, जैसे एकलव्य को दिखाते हैं, बहुत अच्छा धनुर्धर है, लेकिन खड़ा कहां था, किस पक्ष में खड़ा है, अर्जुन किस पक्ष में खड़ा है ना। कोई कहे कि ये बहुत बड़ा निशानेबाज है तो आप उसको रिस्पेक्ट देंगे कि हाँ ये तो बहुत निशानेबाज है, लेकिन आपको जो ही पता चलता है कि ये तो दुश्मनों से मिल गया है, फिर क्या करेंगे, वो रिस्पेक्ट देंगे। तो भले आपका ज्ञान योग है, सब में आप प्रवीण हैं, लेकिन इसके पीछे का मूल उद्देश्य क्या है, आप क्यों कर रहे हैं इतना, ये देखना है कहीं हमारा इसके पीछे नेम फेम इसकी भावना तो नहीं है ना। तो जो ही ये भावना आई तो हम जितना कर रहे हैं ना, ये कहां चला गया, असुरियत, ये तो देह से कनेक्टेड बातें हो गई। तो भले हम ईश्वरीय संप्रदाय में हैं, लेकिन हमारा जो जो मिली भगत है या कर्तव्य हो, किसके तरफ हो गया, जो ही नेम फेम की बात आई, ये आश्री कर्तव्य हो गया, हम रावण की तरफ हो गए। तो इसलिए एफर्ट करें, हमारा ज्ञान योग रहे, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें हमारा मैपन तो नहीं आ रहा, इसमें मान शान की भावना तो नहीं आ रही। तो इसीलिए निश्चय है ना, निश्चय चाहिए पहले, और निश्चय जब हम बार बार किसी के साथ रहेंगे, किसी के साथ अचानक हम किसी के पास आएंगे तो निश्चय हो जाएगा क्या, उनके साथ रहेंगे बार बार, समझेंगे देखेंगे तो निश्चय होगा ना कि ये कैसे हैं। तो ऐसे ही जब हम बाबा के साथ रहेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, बार बार मुरली पढ़ेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा ना, नहीं ये तो भगवान के ही महावाक्य होंगे, ऐसा तो कोई बोल ही नहीं सकता। तो जितना बार बार इसको हम रिवाइज करेंगे, रियलाइज करेंगे, तो ये हमारा निश्चय बढ़ता जाएगा। और यही बाबा कहते हैं कि जब निश्चय आपका बहुत बढ़ेगा ना, यही नशा में बदल जाता है, नशा में बदल जाएगा। इसीलिए बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ करो, लेकिन पुरुषार्थ के पहले क्या करो, निश्चय बुद्धि होकर पुरुषार्थ करो। यदि निश्चय बुद्धि होकर पुरुषार्थ करेंगे तब हम कहां पहुंच पाएंगे, मंजिल पर पहुंच पाएंगे। तो पहले निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि अर्थात पहले दो निश्चय तो चाहिए ही, एक तो स्वयं में भी कि हम खुद को भी आत्मा देखें बिंदु रूप में, बाबा को भी। इसीलिए बाबा ने एक बार कहा था कि भले बाबा सम्मुख आए हुए हैं, सम्मुख दिख रहा है कि हाँ बाबा यहां आए स्टेज, हम बाबा को देख भी रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा भले बाबा को आप सम्मुख देख रहे हैं लेकिन याद कहां करो, कहां करो, परम धाम में। भले बाबा सम्मुख है लेकिन परम धाम में। तो यही प्रैक्टिस बाबा हमेशा बताते हैं कि आप किसी को भी सामने देखो तो आत्मा देखो, लेकिन आत्मा देखो उसके बारे में नहीं सोचने लगो, देखो आत्मा लेकिन याद किसे करो, बाबा को। कहीं भी अगर ये आप पुरुषार्थ करते रहते हैं तो भी इससे भी आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार है कि हम कैसे मुरली पढ़ें, कैसे मुरली सुने जो दिन भर याद रहे। जरूरी नहीं है कि सारी मुरली याद रहेगी, लेकिन कुछ एक पॉइंट आप उसमें चूज करें जो आपको बहुत अच्छे लगे, और उसमें एक दो पॉइंट लेकर के पूरे दिन उसी पर चिंतन करते रहें। तो कैसे पढ़ें मुरली कि मुरली याद रहे? तो मुरली जब सुनते हैं तो उसको बुद्धि से क्या करें, देखें, बुद्धि रूपी नेत्र से देखें तो आपको मुरली याद रहेगी। केवल सुनेंगे तो उससे याद नहीं रहेगी, और वो याद भी रहेगी तो केवल पॉइंट के रूप में, पॉइंट्स के रूप में। तो जैसे बाबा ने कहा है ना कि अभी क्या होना है, क्या बात समझने की है और निश्चय करने की है, तो बाबा ने कहा कि अभी सभी आत्माओं को क्या होना है, हिसाब किताब चुकतु होना है। हिसाब किताब चुकतु होना है अर्थात, हिसाब किताब चुकतु होना है अर्थात, हिसाब किताब चुकतु होना है अर्थात ऐसा नहीं है कि बाबा आपसे पनिशमेंट दो, सजा दो, ये सब क्यों क्यों कहा जाता है। ये भगवान है, भगवान तो पनिशमेंट नहीं देगा ना अपने बच्चों को, क्यों बाबा के ये कहने का अर्थ क्या है। जैसे मान लीजिए आप किसी के घर में जाते हैं, आपके साथ कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जाते हैं वहां आपके साथ, उनके घर में किसी के घर में, और वहां डेकोरेशन रखे हैं, कुछ ये रखा है, आपका छोटा बच्चा है वो उसको उठा लेता है, तो भले वहां उठा के खेल रहा है फिर भी आप कहेंगे कोई बात नहीं, लेकिन जब वापस लौटने लगेंगे तो क्या कहेंगे, उसको रखो वहां, जो चीज जहां थी वहां रखो, बोलेंगे ना बच्चे को, कि बोलेंगे कि उठा के ले चलो कोई बात नहीं, बोलेंगे ऐसा। अब उसमें अगर बच्चा रोने लगे कि हमसे रखवा रहे हैं तो हम छोड़ देंगे, बच्चा रो रहा है अभी कोई बात नहीं, रो रहे तो ले चलो अभी, ऐसा तो नहीं करेंगे। भले रो रहा है लेकिन वो चीज किसकी है, उसको वहीं रखवाएंगे ना। तो यही अंतर है और कुछ भी नहीं है। ये जो सजा पनिशमेंट और सब कुछ जो है ना, ये कोई अलग चीज नहीं है, इसी में हमको तकलीफ हो जाती है। क्या तकलीफ हो जाती है? बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे आप परम धाम से जो आए थे लेकर के, वही केवल आपका है, वही ईश्वरी गुण आपका है। अब आप यहां आ गए रावण राज्य में और यहां क्या सोचते हैं, हम यहां की चीज भी लेके चलो, यही संस्कार लेके चलो। तो बाबा कहते नहीं बच्चे इसको तो छोड़ दो, लेकिन हम चाहते हैं वही क्रोध, वही विकारी ख्यालात, यही चिंतन, यही लेके हम चले। बाबा कहते नहीं बच्चे ये वहां नहीं जा सकता। तो इसी को छोड़ना हमें क्या लगता है, इसी में तकलीफ होती है, क्योंकि हम इसी में रह गए ना। यहां गीत सुनते हैं, यहां मूवी देखते हैं, यहां ऐसे हम मनोरंजन करते हैं, इसके बिना रह ही नहीं सकते, दुनिया में ऐसे ही होता ना। तो यहां भी क्या कहते हैं बाबा कि इसीलिए जो कलयुगी संस्कार है, आसुरी संस्कार है, ये ईश्वरी संस्कार नहीं है। हमारे तो ईश्वरी संस्कार है ना, बाबा ने कहा जो मेरे संस्कार है वो संस्कार केवल तुम्हारे आपके हैं, बाकी और जो संस्कार है उनको क्या करो, छोड़ दो यहीं। नहीं छोड़ेंगे तो जैसे माँ बाप होते हैं ना, बच्चे से जबरदस्ती लेकर रख देते हैं ना, तो अब नहीं छोड़ेंगे तो बाबा कहेंगे ना बच्चे ये नहीं जाएगा, लेके रख देगा बाबा, हाँ अब चलो। तो जब जबरदस्ती बाबा करेगा ना तो यही हमको क्या लगता है, यही हमको सजा फील होती है, हमको लगता है कि बाबा क्यों ले रहे हैं ये तुम। लेकिन बाबा को पता है कि भाई ये तो रावण का है संस्कार, उसका है, उसकी संपत्ति है। तो यही कार्य बाबा केवल करवाते हैं कि जो रावण का की जो संपत्ति है ना, बाबा यही कहते हैं कि जो रावण की संपत्ति है उसे केवल आप छोड़ दो। जो हम देह को समझते हैं, देह के संबंधों में फंसे हैं, यही सब रावण की संपत्ति हो जाती है। रावण की उत्पत्ति कहां से होती है, जब हमने देह समझा, देह देखा है ना, तो देखिए सारा आधार यहीं से, सारा उसका विस्तार है, तो यही छोड़ना है, तो और कुछ अलग नहीं है, है ना। तो हिसाब किताब चुक्त होना अर्थात जो भी यहां का है यही छोड़ दो, अपनी समझ से, योग बल से, बाबा इतना समझा रहे हैं उसके आधार से इसको छोड़ दिया, तो यही हिसाब किताब चुक्त होता है ना। और इसी प्रकार मुरली कैसे याद करें, बाबा ने क्या कहा कि सभी आत्माएं अंत में कहां जाएंगी, परमधाम, और कैसे जाएंगी, मच्छरों सदृश। तो आप इसको देखिए, जो ही मुरली सुनते हैं ना, ऐसे नहीं मच्छरों सदृश जाएंगे फिर आगे लाइन में चले गए, नहीं, जब हम सुनते हैं ना तो उसको देखें कि जैसे आत्माएं मच्छरों सदृश, उसके साथ ही साथ आत्माएं मच्छरों सदृश परमधाम जाएंगी, तो उसको देखिए कि कैसे आत्माएं जा रही परमधाम में, एक सेकेंड के लिए आत्माएं परमधाम में जा रही है ना, बाबा के पास, बाबा के पास परमधाम में चली गई। अब वहां क्या देखिए फिर, कि वहां से है ना, परमधाम से, जैसे बाबा ने कहा ना, परमधाम से थोड़ी सी आत्माएं कहां आएंगी, क्या बताया बाबा ने, थोड़ी सी आत्माएं कहां आएंगी, नई दुनिया में। तो ये तीनों चीज देखिए, तीनों चीज देखिए, देखिए आपको दिन भर याद रहेगा कि नहीं, आप केवल पॉइंट याद रखेंगे ना वो भूल जाएगा, क्या कहा था बाबा ने, ऐसे एक एक शब्द याद करेंगे, अच्छा वो भूल जाएगा, लेकिन अगर इसको दृश्य के रूप में आपने देख लिया ना पूरे दिन याद रहेगा। इसीलिए मुरली ऐसे सुने, तो कैसे कैसे सुने, कि आत्माएं मच्छरों सदृश कहां जा रही हैं, परमधाम, आप देखिए जा रही हैं, फिर परमधाम में देखिए आत्माएं पहुंच गई सब इकट्ठा है, अब वहां से थोड़ी सी आत्माएं उतर रही है, उतरते हुए देखिए, पहले परमधाम में जा रही आत्माएं, फिर वहां से थोड़ी सी आत्माएं उतर रही है, कहां उतर रही है, कहां उतर रही है, बाबा ने कहा नई दुनिया में, है ना, जो आत्माएं उतर रही है, अब थोड़ा टाइम हो गया ना, गई और आई, तब तक यहां सत्यों का निर्माण, तो नई दुनिया में आ रही है आत्माएं, तो नई दुनिया देखे, नई दुनिया कैसी है, नई दुनिया कैसे है, वहां कौन है, तो नई दुनिया को भी एक सेकंड के लिए देखें कि वहां देवी देवताएं हैं, है ना, मुकुट है, ताज है सबको, बस जैसे चमक रहे हैं, जैसे लाइट ही लाइट देख रहे हैं, प्रकृति कितनी सत्व प्रधान है, नदी भी कैसी है, नदी का जल भी कैसा है, दूध दुग्ध जैसा सफेद व्हाइट, और बाबा ने कहा है नदी की गहराई भी कितनी होती है, एक मुरली में कहा है बाबा ने कि नदी की गहराई कितनी होती है सतयुग में, कमर, कमर जितना गहरा होता है, कहीं भी इससे ज्यादा गहरी नदी नदी नहीं होगी, कमर जितना पानी क्यों होगा। तो ऐसे आपने देखा, तो कहां है आत्मा उतरी, नई दुनिया में, तो जो परमधाम से आत्मा आ रही वो भी देखा आपने, फिर नई दुनिया आपने देख लिया, देवी देवताओं को, यहां की प्रकृति को देख लिया। अब ये तो याद रहेगा ना दिन भर के, भूल जाएगा, याद रहेगा ना कि मच्छरों सदृश आत्मा जा रही है, फिर आ रही है, थोड़ी सी आत्माएं आ रही है नई दुनिया में, कौन सी दुनिया, तो नई दुनिया को देखे। तो मुरली रिवाइज करना अर्थात बैठ के फिर इसको देखना, इसी को देखना, केवल पढ़ना नहीं, 10 बार पढ़ेंगे लेकिन याद कुछ भी नहीं रहेगा, भूल जाएगा समय पर। तो इसलिए इस मुरली को जब भी हम सुनते हैं तो उसको देखें, बुद्धि से देखें।